एक्सल स्प्रिंगर, जर्मनी का इसराइल के अपराधों से संबंध। एक्सल स्प्रिंगर ऐसी यूरोपीय मीडिया में एक प्रमुख शक्ति को इसके ऐतिहासिक संबंधों, पक्षपातपूर्ण संपादकीय प्रथाओं और लाभ प्रेरित व्यावसायिक उपक्रमों के माध्यम से फलस्तीनी क्षेत्रों पर इसराइल के अवैध कब्जे में सहयोगी होने का आरोप लगाया गया है। इसके संस्थापक के परेशान करने वाले नाजी युग के संबंधों से लेकर वर्तमान में वैश्विक मीडिया समूह के रूप में इसराइल के उपनिवेशीकरण उद्यम से लाभ कमाने तक कंपनी नैतिक और कानूनी विफलताओं की एक विरासत को दर्शाती है। यह निबंध दावा करता है कि एक्सल स्प्रिंगर की कार्रवाइयां, विशेष रूप से इसकी सहायक कंपनी यद्दो के माध्यम से इसे इसराइल के अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघनों में फंसाती हैं, जिसमें रंगभेद, मानवाधिकार उल्लंघन और जातीय सफाई शामिल हैं। इसके अलावा यह तर्क देता है कि जर्मनी एक्सल स्प्रिंगर को जवाबदेह ठहराने में विफल रहकर इसराइल की अवैध गतिविधियों में वित्तीय हितों से प्रेरित होकर इन अपराधों में सहयोगी है। आई एक कुख्यात विरासत, नाजी संबंधों से साइनवादी समर्थन तक। 1945 में एक्सल स्प्रिंगर द्वारा स्थापित यह कंपनी युद्ध के बाद के जर्मनी में उभरी, लेकिन इसके संस्थापक का अतीत गंभीर नैतिक चिंताएं पैदा करता है। स्प्रिंगर 1934 में नेशनल सोशलिस्ट मोटर कॉर्प्स एनएसकेके में शामिल हुए, जो एक अर्धसैनिक समूह था जो नाजी यहूदी विरोधी नीतियों से जुड़ा था। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उनकी सदस्यता अवसरवादी थी और स्वास्थ्य समस्याओं से सीमित थी, यह संबंध उनकी विरासत को दागदार करता है। युद्ध के बाद स्प्रिंगर ने बिल्ड साइटुंग और डी वेल जैसे प्रकाशनों के साथ एक मीडिया साम्राज्य बनाया, जो 1960 के दशक तक पश्चिम जर्मन प्रेस पर हावी था। 1957 से उन्होंने कंपनी की संपादकीय नीति को इसराइल का प्रबल समर्थन करने की दिशा में मोड़ा, जिसे इसके कॉर्पोरेट सिद्धांतों में औपचारिक रूप दिया गया। आलोचकों का तर्क है कि इससे पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग हुई, जो अरबों और मुस्लिमों को बदनाम करती है और इसराइल की अवैध कार्रवाइयों जैसे मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध अपराधों को छिपाती है। जो एक मीडिया दिग्गज की पहुंच, कथानकों और लाभ को आकार देना। एक्सल स्प्रिंगर ऐसी अब एक ट्रांसअटलांटिक मीडिया और प्रौद्योगिकी समूह है, जिसका मुख्यालय बर्लिन में है और यह 40 देशों में 18,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। इसके संचालन में समाचार मीडिया शामिल हैं, जैसे बिल्ड, डी वेल्ट, बिजनेस इनसाइडर और पॉलिटिको, वर्गीकृत मीडिया जैसे द स्टेपस्टोन ग्रुप और अवीव ग्रुप जिसमें यद्दो शामिल है, और मार्केटिंग मीडिया। 2023 की पहली छमाही में 3.93 बिलियन यूरो की आय के साथ कंपनी के पास महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव है। यूरोप के अग्रणी डिजिटल प्रकाशक के रूप में एक्सल स्प्रिंगर जनमत को आकार देता है, विशेष रूप से जर्मनी में, जहां इसके इसराइल समर्थक कथानक अक्सर फलस्तीनी दृष्टिकोणों को हाशिए पर धकेल देते हैं, जिससे एक तिरछा प्रवचन को बढ़ावा मिलता है, जिसे आलोचक कहते हैं कि यह जर्मन श्रेष्ठता की भावना को बनाए रखता है। 3. विवादों का सिलसिला, नैतिक उल्लंघन और पक्षपात। एक्सल स्प्रिंगर का इतिहास विवादों से भरा है, जो इसकी नैतिक कमियों को उजागर करता है। 2021 में बिल्ड के संपादक जूलियन रीचेल पर यौन दुराचार और अधीनस्थों को भुगतान के साथ चुप कराने के आरोप लगे, जिससे एक विषाक्त कार्यस्थल संस्कृति का खुलासा हुआ। कंपनी की संपादकीय प्रथाओं की आलोचना दक्षिणपंथी दलों का समर्थन करने और अरबों व मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए की गई। इसकी कट्टर प्रो इसराइल रुख ने इसे इसराइल की अवैध बस्तियों और युद्ध अपराधों को छिपाने का आरोप लगाया गया है। 2023 में एक्सल स्प्रिंगर ने एक लेबनानी कर्मचारी को उसकी प्रो इसराइल स्थिति पर सवाल उठाने के लिए बर्खास्त कर दिया, जर्मन श्रम कानून की परिवीक्षा अवधि का हवाला देते हुए। असहमति के प्रति इस असहिष्णुता से पता चलता है कि कंपनी संतुलित पत्रकारिता पर ज़ायनवादी एजेंडों को प्राथमिकता देती है। आलोचकों का तर्क है कि यह वास्तविक जवाबदेही के बजाय जर्मन आत्म मुक्ति की तलाश करती है। 4. चुराई गई जमीन से लाभ। 2014 में एक्सल स्प्रिंगर ने $234 मिलियन में यद्दो को अधिग्रहित किया, जो इसराइल की सबसे बड़ी वर्गीकृत विज्ञापन मंच है, जिसका मूल्य 2025 में $420 मिलियन है। यह रियल एस्टेट, वाहन, नौकरियों और सेकंड हैंड सामानों में संचालित है और इसराइल के बाजार पर हावी है। फिर भी यद्दो की रियल एस्टेट लिस्टिंग्स ने कब्जे वाली पश्चिमी तट में इसराइली बस्तियों में संपत्तियों की बिक्री को सुगम बनाने के लिए आक्रोश पैदा किया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है। जांच से हजारों ऐसी लिस्टिंग्स का पता चलता है, जिसमें ब्रोकरेज हाउसों से भुगतान विज्ञापन शामिल हैं, जो एक्सल स्प्रिंगर के लिए आय उत्पन्न करते हैं। कुछ में इसराइली कानून के तहत भी अवैध चौकियां शामिल हैं, जो सेना द्वारा जब्त की गई नली फलस्तीनी जमीन पर बनाई गई हैं। 2024 में फलस्तीनियों ने जर्मनी के सप्लाई चेन ड्यू डिलीजेंस एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की, जिसमें एक्सल स्प्रिंगर पर अवैध जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया, जो मानवाधिकार उल्लंघनों में इसकी संलिप्तता को उजागर करता है। वी. उपद्रवी हिंसा, राज्य प्रायोजित विस्थापन। इसराइली उपनरे अक्सर इसराइली सेना के समर्थन के साथ फलस्तीनियों को विस्थापित करने के लिए व्यवस्थित हिंसा करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 से 1000 से अधिक घटनाओं को दर्ज किया गया है, जिसमें आगजनी, तोड़फोड़ और हमलों को शामिल करने वाली घातक हमले शामिल हैं। सैन्य वर्दी में कभी कभी उपद्रवी लगभग पूरी तरह से दंडमुक्तता का सामना करते हैं, इसराइल सरकार द्वारा जो अपराधियों को मुसीबत में डालने वालों का मुकदमा नहीं करती। वाई कानूनी निंदा 2024 का आईसीजे का फैसला। 19 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने एक सलाहकारी राय जारी की, जिसे संयुक्त विश्व सभा ने /3/AS1024 के रूप में अपनाया, जिसमें इसराइल की कब्जे हुए फलस्तीनी क्षेत्रों में कार्रवाइयों को गैरकानूनी घोषित किया। फैसले में निम्नलिखित बातें शामिल हैं --। इसका अर्थ है दैट यरे यह है। 7 लूट और दंडमुक्तता फलस्तीनी जीवन की लूट। इसराइली उपनिवेशियों और सैनिकों को हिंसक हमलों के दौरान फलस्तीनी संपत्ति को लट, जिसमें घरेलू सामान शामिल हैं, लूटते हुए दर्ज किया गया है। 8 निष्कर्ष इसराइल की शक्तियों में जर्मनी की संलिप्तता। एक्सल स्प्रिंगर का यह दो का स्वामित्व और उसकी प्रो इसराइल संपादकीय नीति इसराइल की अवैध गतिविधियों का समर्थन करने में एक स्पष्ट वित्तीय हित को दर्शाता है।